Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, और उससे पहले धन्यवाद लालिमा. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. अगले आधे घंटे में हम देखेंगे कि देश और दुनिया में कौन सी अहम आर्थिक गतिविधियां रही और उन पर चर्चा भी करेंगे. आज की खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सुबोध, और थैंक यू लालिमा.
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग.
थैंक यू सुबोध. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एज ओवर 0.5% हायर. सेंसेक्स क्लोजेस अबव 85,000 लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर. निफ्टी राइजेस 143 पॉइंट्स. Prime Minister Narendra Modi releases 21st installment of PM Kisan scheme to support 9 crore farmers across the country. And global crude oil prices dip over 1%.
देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आधा प्रतिशत से ज्यादा बढ़े. सेंसेक्स इस साल पहली बार 85,000 के ऊपर बंद हुआ. निफ्टी 143 अंक बढ़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9 करोड़ किसानों की सहायता के लिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 1% से ज्यादा की गिरावट.
Well, before we begin, here's an announcement, friends, that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
तो लालिमा, सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा है.
जी सुपोर्ट.
देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में आज तेजी का रुख रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज आधा प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त रही. कारोबार की शुरुआत में सूचकांकों में थोड़ी गिरावट दिखी थी, लेकिन आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स की बढ़त ने बाजार को संभाल लिया. सेंसेक्स 513 अंक बढ़कर 85,186 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 143 अंक ऊपर 26,053 पर आ गया. आज के कारोबार में खास बात यह रही कि सेंसेक्स इस साल पहली बार 85,000 के आंकड़े के ऊपर बंद हुआ है. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की बढ़त देखी गई.
Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended over 0.5% higher today, largely led by gains in IT and banking sectors. Despite starting the day on a negative note, the indices swiftly reversed course and maintained an upward trajectory throughout the trading session. The Sensex surged 513 points to close at 85,186, while the Nifty advanced 143 points to settle at 26,053. Sensex closed over 85,000 mark for the first time this year. Meanwhile, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed mixed. The mid-cap index advanced over 0.3%, while the small-cap index declined 0.4%.
और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त रही. सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर गौर करें. एचसीएल टेक के शेयर 4.3%, इंफोसिस के 3.7% और टीसीएस के 2% बढ़कर बंद हुए. सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड में 2.8%, मारुति में 1.3% और अडानी पोर्ट्स में 0.8% की गिरावट देखी गई.
Across sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, focused IT advanced almost 3.1%, IT increased over 2.9%, and tech rose 2.2%. Among the key decliners, energy slipped almost 0.5%, oil and gas dipped nearly 0.4%, and realty as well as industrials both decreased over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,338 companies declined, 1,841 advanced, and 167 remained unchanged. سر سشما 85,000 مارک آئی تھنک سبودھ یو کین کال اٹ ا واو مومنٹ ونس اگین فار دا
اس سال تو پہلی بار اس کے اوپر بند ہوا حالانکہ ایک مہینے پہلے اس سے اوپر ایک بار نکلا تھا ڈے ٹریڈ مل بٹ بند تو آج ہوا ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو 85,000 کا ایک ریزسٹنس دکھ رہا تھا بار بار وہاں ٹچ کر کے یا اس سے تھوڑا پہلے وہ رک رہا تھا آج اسے بریچ کر گیا
بالکل
آپ کی کیا آپ کا کیا کہنا ہے
یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے بہت ہی بڑی خبر ہے اور جیسے آپ نے کہا وہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے جھجک رہا یہ سینسیکس لیکن پہنچ گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو باقی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں بڑی بڑی اسٹاک مارکیٹس ہیں اب آپ وال اسٹریٹ دیکھیں آپ فٹسی دیکھیں اور باقی جو ایشین مارکیٹس بھی اس وقت سب ڈاؤن ہیں یہ ہی ایک شائننگ لائٹ سمجھ لیجئے یہاں پر ہے دنیا بھر میں جو ابھی بجھی نہیں ہے ابھی چل رہی ہے ہماری مارکیٹ برائٹلی اور اس کی وجہ کچھ ایک تو پہلے اس کے بارے میں ہم نے کافی بات کی ہے مارکیٹ منترا پہ ہی کہ جو ڈومیسٹک ریٹیل انویسٹرز نے کافی یہاں پر اس مارکیٹ میں کافی پیسے ڈالے ہیں اور ان کا فیتھ جو ہے انڈیا سٹوری میں اس نے یہ مارکیٹ کو ڈبانے کے بجائے یہ مارکیٹ بڑھتی گئی اور ابھی جو امیڈیٹ ٹریگر یہ ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ کامرس منسٹر پیوش گوئل نے بولا ہے کہ جو انڈیا یو ایس کی جو ٹریڈ ڈیل ابھی آنے والی ہے کچھ امیدیں ہیں کہ ابھی ہو جائے گی تو اس سے مارکیٹ تھوڑی سی پک اپ ہو گئی ہے کیونکہ یہ اس کے لیے اس کے بارے میں کافی انتظار چل رہا تھا تو اگر یہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے
اور نریات پر آدھارت جو بھی ادیوگ ہیں ہمارے جو ٹیرف بڑھنے سے پریشان تھے
بالکل
ان کے لیے بہت بڑی راحت ہوگی اگر اچھا اگر کوئی سکاراتمک ہمارے لیے ڈیل ہو جائے
بالکل انفیکٹ پر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں لیٹسٹ جو اکتوبر ڈیٹا آیا ہے ٹریڈ کا اس میں اوور آل تو ہماری جو نریات ہے وہ کم ہوئی ہے 11% کم ہوئی ہے لیکن امریکہ کے لیے 4 مہینے کے بعد بڑھوتری ہوئی ہے ہاں 14% سپٹمبر میں بڑھا ہے سوری اکتوبر میں سپٹمبر کے بجائے تو منتھ آن منتھ جو انکریز ہوا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بڑھا ہے اور اس کا لگتا ہے کہ کچھ سیکٹرز جہاں ٹیرفز کم ہیں وہاں بڑھ گیا ہوگا
Yes, as Subho just talked about exports, Sushma, when US put tariffs on us, we were a little scared, kind of, you know, which way we would go. But we've managed pretty well on the whole. We've gone to many other markets and we've found new markets for exports. Yes. So it hasn't been that bad as it could have been. And we've managed to be a very resilient economy when it came to exports.
Yes, there has been tremendous resilience. In fact, this has been pointed out by that latest study by Moody's, which has said that Moody's and also if you see even the Organization for Petroleum Exporting Countries, the cartel OPEC has also done a study recently. Mm-hmm. Both of them have said that the impact of the tariffs is not so significant on India because number one, it's a domestic oriented economy. Number two, they have very swiftly diversified their markets. So though the October data has shown that there is a dip in overall exports, September had shown an increase, which was very surprising. Mm. So there is there's an effort to diversify, especially, for instance, if you see gems and jewelry, they are looking at UAE, they are looking at African markets, they are looking at Southeast Asian markets, and they have already begun to tie up. So, of course, there's a level of pain, but the government has also said that they're going to support exporters. That's also a big relief to them. And, of course, if the deal comes through, that will be very good.
جی اور ایک اور آج غور کرنے والی چیز ہے بینک نفٹی یہ آل ٹائم ہائی پر رہا ہے تو کافی اس سے بھی اچھا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے
ہاں بالکل اس کا بھی ایک ٹیل وینڈ سمجھ لیجئے مارکیٹس میں آیا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی بات چل رہی ہے کہ بینکس کی مرجرز ہونے والے ہیں کنسولیڈیشن ہونے والا ہے اور یہ جو اتنے سارے چھوٹے چھوٹے بینکس ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کر کے یہ
بڑے بینک بنائے جائیں سرکاری
सरकारी बैंक जो बन जाएंगे, जो एफिशिएंटली ऑपरेटिंग हो जाएंगे. और मेरे ख्याल में पता नहीं आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो ऑपरेशंस और एफिशिएंसी, क्योंकि मैं उनकी भी कस्टमर रही हूँ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी कस्टमर रही हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मुझे लगा ज्यादा एफिशिएंसी है,
बेहतर
हुई है.
और एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कई जगह से अब शिकायतें आ रही हैं कि उनकी एफिशिएंसी कम हुई
और उनमें बहुत
ज्यादा कमर्शियल हो गए.
बिल्कुल नहीं, ज्यादा रेड टेप आ गया उनमें, बहुत ज्यादा रेड टेप आ गया.
एंड द चार्जेस आल्सो वेरी रीजनेबल इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिकॉज़ दे आर केटरिंग टू द मासेस.
यस
अनलाइक इन द प्राइवेट बैंक्स, दैट्स आल्सो प्लस पॉइंट. यू जस्ट मेंशनड सुषमा अबाउट द फेथ ऑफ द इन द डोमेस्टिक मार्केट्स ऑफ इंडियंस. We are going to have Satya Nadella coming to India from 10th of December. And we also had, so Microsoft and Google both are investing. Microsoft, we expecting about $3 billion worth investment. Google, $15 billion investment for AI hubs. We are gung-ho about investments at the moment.
Yes.
We are also gung-ho about the, as you mentioned, the domestic investors. So is it a great going ahead? How do you see?
Yes, absolutely. I mean, the fact is that although President Donald Trump has actually told the tech companies not to invest in India, they are going ahead to do it. Now, for instance, he apparently, is reportedly told the head of Apple that, you know, why are you investing so much in India? You must invest in the US. And of course, the Apple CEO said, we're going to invest some, you know, $300-400 billion in the US. But they have informed the Indian government that their investment plans are going ahead. They are not going to stop their investment plans because the plans for India are long-term plans. Mm-hmm. And investment in, of course, America, in the US, would be probably for high-tech areas where, the very high cost of infrastructure as well as personnel can be justified.
Ji, agli khabar pe chalte hain. Dekhen aaj rupay ka kya hal raha. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 88.58 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती आंकने वाला डॉलर सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 99.7 पर चल रहा था. और एशिया के बाजारों में आज क्या रुख रहा है लालिमा, कुछ खबरें वहां से भी हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिलाजुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% लुढ़का. हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% के नुकसान में रहा. जापान के निकेई में 0.3% से अधिक गिरावट आई. लेकिन चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 0.2% ही गिरकर बंद हुआ है. सबसे कम गिरावट यहीं दिखाई दे रही है. सिंगापुर के स्टेट टाइम सूचकांक में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन यह भी सकारात्मक रहा. प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे. ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में 0.3% की बढ़त चल रही थी, जबकि फ्रांस के कैक और लंदन के फुटसी दोनों में थोड़ी बढ़त देखी जा रही थी. क्षमा करें, एक इसमें करेक्शन है कि वो चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% वो पॉजिटिव है, बढ़कर बंद हुआ.
Exactly.
All right, a look at the U.S. markets now. Wall Street closed in negative territory yesterday as technology shares continued to retreat on concerns about valuations of artificial intelligence-related stocks. Among the major indices, the tech-heavy Nasdaq Composite Index shed 1.2%. The Dow Jones Industrial Average lost almost 1.1%, while the S&P 500 fell over 0.8%, making its fourth consecutive session of losses. How do you view the U.S. markets? Very significant because U.S. markets supposedly affect the markets all over the world. And inflation also, how do you view the inflation? A few years ago, of course, it's gone up a lot. But what is the status of the U.S. economy, Sushma?
Well, the fact that, and of course, it is true that Wall Street does affect, is the leader as far as stock markets around the world are concerned. Mm-hmm. The trend is set by Wall Street. But of course, as I pointed out, India has been an outlier. India has been very different. But the fact that Wall Street has closed negative territory, this has been going on for a few days now. It is started with the fact that the SoftBank chief Masayoshi Son withdrew his shareholding in NVIDIA, and he invested in OpenAI, in another AI company. So that was seen as a loss of faith in NVIDIA, which is the most, it is the richest or the most important company in the world today, the company that has created the most wealth. The highest market valuation is NVIDIA. Mm-hmm. So after that, there have been all these concerns over the fact that AI, whether AI is a bubble, and technology shares have been dipping. So I think Sundar Pichai has made a statement today in an interview saying that, if this bubble does burst, that it's not just going to affect one person, it's going to affect everybody. But so far, it just seems to be a slight dip, and there is some concerns. But the fact is that, AI is not just a bubble. The only thing is that there is so much of money that is being poured into these tech stocks that there's a concern over whether this is being justified. AI, there's nothing bubble-like at all about AI. It's a big reality in our future. Mm-hmm. So these are the fears that are pushing the American stock markets, and it is having a ripple effect around the world.
And artificial intelligence seems to be having a very major role in the markets, because when China came out with its own DeepSeek technology, then the AI stocks in US took a bit because
DeepSeek was made with a very
faster and cheaper.
much less cost, and has given rise to the feeling that even in India we should be able to make something like that, a large language model that would be able to compete with the West, even though we don't have that kind of investment available. AI. And of course, the other thing that is worrying the stock markets right now is the fact that across the tech companies, you are having layoffs. And in the US, it is a great deal. It has also touched India, but not as much. And these layoffs are due to AI. So where is this going to lead us?
IT की दुनिया में, टेक की दुनिया में भी कुछ नया होगा. देखते हैं अगली खबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त जारी की. देश भर में 9 करोड़ किसानों की सहायता के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई. वहां दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र का पिछले 11 वर्षों में कायाकल्प हुआ है.
मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है. हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है. खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है.
जी, और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश प्राकृतिक खेती के मामले में वैश्विक केंद्र बन गया है और इसकी जैव विविधता नया आकार ले रही है. उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्डों के जरिए किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ प्राप्त हो चुका है.
किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है. 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं. बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है.
जी सुषमा, अभी जो प्रधानमंत्री की बात हमने सुनी है नेचुरल फार्मिंग को लेकर कि हमारा देश अब इसका वैश्विक केंद्र बन गया है, लगभग तैयार है, और इस दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं. बल्कि हमारे यहाँ एक राज्य तो अब पूरी तरह ऑर्गेनिक घोषित हो चुका है और दूसरा राज्य उस तरफ बढ़ रहा है, तो काफी कुछ होता हुआ दिख रहा है, और शायद इस मामले में हम वर्ल्ड लीडर हैं.
बिल्कुल, और मेरे ख्याल में जैसे आपने तो खैर बात की, एक तो सिक्किम ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम हमारा पूरा जो प्रांत है वो ऑर्गेनिक हो गया है. उत्तराखंड जैसे आपने कहा वो भी उसकी तरफ जा रहा है. बट लेकिन अगर आप देखें कि दूसरे स्टेट्स में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में काफ़ी सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, तो ये कई कई जगहों में बहुत ज़्यादा हो रहा है. और ये इनफैक्ट ये साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट हुई है, तो मैं अभी साउथ इंडियन स्टेट्स की ही बात कर रही थी, वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की बहुत बढ़ोतरी हो रही है. और इसका फ़ायदा क्या है, ये जो हम केमिकल्स और ये केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल करते हैं, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं. और अगर हम इनके बिना अगर फार्मिंग हो सकती है और नेचुरल पुराने हमारे जो टेक्निक उनसे हम सीख लें, और इसमें काफ़ी सारी साइंटिफिक मतलब स्टडीज़ की गई हैं कि जो पुराने जो टेक्निक्स हैं और नेचुरल टेक्निक्स हैं उनसे ये जो पेस्ट्स और वगैरह की जो प्रॉब्लम है और फर्टिलाइजर्स की जो है उससे जो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है फर्टिलाइजर्स से, उसके बजाय हम ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स और नेचुरल मतलब ये जो पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स के पास क्यों गए, क्योंकि ये जो है ये जो इंसेक्ट्स और ये पेस्ट्स जो हैं इनकी वजह से ये हमारी उत्पादन कम हो रही थी, फर्टिलाइजर्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है.
उसमें उछाल तो आया था और वो समय की मांग थी शायद.
समय की मांग थी, बिल्कुल समय की मांग थी उस वक्त. और अभी भी हम सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को नहीं मतलब वी कैन नॉट डू अवे विद देम, लेकिन कई कई जगहों में धीरे धीरे करके हम बढ़ा सकते हैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर.
एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है लोगों को कि अगर जो हमारे जो परंपरागत तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का तरीका है, जो नेचुरल फार्मिंग का तरीका है, वो साइंटिफिक नहीं हो सकता है या साइंस के साथ उसका कुछ विरोध है. ऐसा नहीं है, साइंस के साथ भी उसका तालमेल है, साइंस के साथ सामंजस्य बनाकर भी प्राकृतिक खेती की जा सकती है, ये बात समझनी पड़ेगी.
इंडीड थ्रू पंचगव्य एंड बीजामृत, दैट्स ऑल नेचुरल फार्मिंग इज. आयरोनिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो यूएस डील इन द सेम प्रोग्राम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग. सो वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन वेयर वी कैन एंड वी शुड एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर फिशरमैन एंड फार्मर्स एंड पीपल इन्वॉल्व इन आवर एग्रीकल्चर. वेल मूविंग ऑन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन शेयर्ड द 7th प्री बजट कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस and insurance in connection with the forthcoming Union Budget 2026-27 in New Delhi today. Yesterday, the Finance Minister also met with the stakeholders from the startups ecosystem. The Finance Ministry conducts several pre-budget consultation meetings annually with experts, industry leaders, economists and state officials. The deliberations seek to ensure the Union Budget reflects diverse perspectives and addresses key economic priorities.
जी, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से इसराइल की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे. यह यात्रा भारत और इसराइल के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है. यह दोनों देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और निवेश के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यात्रा के दौरान श्री गोयल इसराइल के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. चर्चाओं में व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, कृषि, रक्षा, उन्नत विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर बातचीत की संभावना है. भारत के साथ इसराइल का जो संबंध है, ये पिछले कुछ दशकों में हमने इसे बहुत बदलते हुए और बहुत विकसित होते हुए देखा है.
बिल्कुल,
किस दिशा में ले जा रहा है हमें?
देखिए, लोगों को जो ज़्यादातर इसराइल और इंडिया के बारे में जो जो मतलब स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हमारा कोऑपरेशन जो कृषि क्षेत्र में है वो बहुत सालों से है और वो आजकल बढ़ गया है, क्योंकि हमने काफ़ी सीखा है इसराइल से. जो उनकी जो ड्रिप इरिगेशन है, ये रेनफेड एरियाज में कैसे करना है, और क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल ये डेजर्ट एरिया में उन्होंने काफी उत्पादन किया है, तो उससे सीख मिली है। और जैसे मैंने कहा, ये कई सालों से चल रहा है और जिस क्वाइटली चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में ये बहुत हाई प्रोफाइल चीज नहीं है, ज्यादातर लोग डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र में हमने बहुत सीखा है इसराइल से कि उन्होंने हाई प्रोडक्टिविटी कैसे की है अपने देश में। इतना छोटा सा देश है लेकिन फिर भी वो कितना अपने कितने क्रॉप्स वो उगाते हैं वहां पर, और ये साइंटिफिक तरीके से हम भी उसका फायदा ले सकते हैं।
बिल्कुल, कुछ चीजों के उत्पादन में तो उन्होंने सचमुच क्रांतिकारी बदलाव किए।
बिल्कुल,
इज़राइल इज वेरी हाई ऑन इनोवेशन एंड आरएनडी, एंड आई थिंक वी कैन टेक अ क्लू फ्रॉम देम।
यस, दिस कोऑपरेशन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली।
और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स TIA पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल एक लागत प्रभावी और ओपन सोर्स समाधान है। यह उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन को प्राथमिकता देता है। यह पोर्टल 28 से अधिक डैशबोर्ड पर 270 से अधिक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि हितधारकों को सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करने के लिए व्यवसायों को व्यापार डेटा के साथ अधिक पारदर्शी होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल आयातकों, निर्यातकों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नए विचार प्रदान करेगा।
All right. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today inaugurated Consulates General of India in Ekaterinburg and Kazan alongside Russia's Deputy Minister of Foreign Affairs Andrei Rudenko. Speaking on the occasion, Dr. Jaishankar expressed confidence that the establishment of the new consulates will boost trade, tourism, economic, scientific, technological, academic and cultural ties between India and Russia. He added that the consulates will contribute to India and Russia's joint efforts in increasing bilateral trade to $100 billion by 2030. Dr. Jaishankar noted that Yekaterinburg is often called the third capital of Russia due to its industrial importance and is the gateway to Siberia. And let's talk about crude oil now. Well, global crude oil prices fell more than 1% today. Brent crude was trading over 1.4% down at $63.93 per barrel, while WTI crude was trading 1.5% down at $59.82 per barrel when reports last came in.
ये अच्छी खबर है सुषमा, है ना?
ये बिल्कुल अच्छी खबर है। जब भी तेल के दाम गिरते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते
तेल हैं, आयातक देश हैं, बड़े तेल
बिल्कुल
कंज्यूम भी करते हैं, और
वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड।
और एक्चुअली काफी समय से ये चल रहा है, अभी कम से कम तेल की कीमतों ने मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक आइसोलेटेड रखने में जो दुनिया में चल रहा है उससे बहुत मदद की।
बिल्कुल, ये जो मॉडरेशन है इससे हमें बहुत फायदा हुआ है
जी।
And friends, in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading around 1.3% up at 1,24,610 rupees per 10 grams. And silver was trading over 2.5% up at 1,59,190 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में दिसंबर अनुबंध वाला सोना लगभग 1.1% बढ़कर 1,24,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1.24% बढ़कर 1,58,383 रुपये प्रति किलो पर थी।
So gold and silver is unstoppable, Sushma. A brief comment, one line.
Absolutely, it is.
बिल्कुल,
it looks like.
आज वक्त इतना ही है सुषमा कार्यक्रम में आने और बहुत अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
All right, friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices edge over 0.5% higher. Sensex closes above 85,000 level for the first time this year. Nifty rises 143 points. Prime Minister Narendra Modi releases 21st installment of PM Kisan scheme to support 9 crore farmers across the country. And global crude oil prices dip over 1%. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor, Subodh Mish, and our expert, Sushma Ramachandran, signing off. So for now, it's namaskar, and see you again tomorrow at 6:30 sharp on Market Mantra. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Oh,